آیت نمبر 6 ہے سورۃ ہود کی، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا جاندار زمین پر مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. اور کیا ہے؟ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی طور پر سونپے جانے کی جگہ کو بھی. اور کیا ہے؟ کُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے. اس ایک آیت میں تین مختلف باتیں ہیں. اگر شروع سے دیکھیے دوبارہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ، مَا کیا ہے یہاں؟ جو کچھ بھی، وٹ ایور، چھوٹی یا بڑی چیز. آپ بھی ذرا سوچیے، کائنات میں کون کون ہے جو چل رہا ہے؟ چیونٹیوں سے لے کر بڑے بڑے ہاتھی اور اونٹ اور نہ جانے کیا کیا مخلوقات جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے. فی الارض، یہاں سے لفظ فی الارض سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ رزق، کھانا پینا صرف زمین والوں ہی کا شعبہ ہے. کا سے اشارہ ہے کہ کھانا پینا، سبزیاں، پھل، جس کو بھی ہم رزق سمجھیں، یہ اس دنیا تک ہے. آج سائنس نے ہمیں بہت سارے اور پلانٹ سے بھی آگاہ کر دیا، لیکن زندگی کے آثار صرف زمین پر ہیں. اسی لیے آپ نے اکثر خبریں پڑھی ہوں گی، فلاں ستارہ ٹوٹا، فلاں گلیکسی ٹوٹ گئی، یہ ہوا. وہ کیوں ٹوٹتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں مخلوق نہیں ہے، وہ بن رہے ہیں اور ٹوٹ رہے ہیں. یہ زمین بھی ٹوٹے گی، لیکن اس پہ چونکہ مخلوق ہے اس لیے اس کو قیامت کہتے ہیں. فرق سمجھے؟ باقی سارے سیاروں اور ستاروں کا ٹوٹنا پھوٹنا ایک معمول کا عمل ہے، بنتے بھی ہیں اور ٹوٹتے بھی ہیں. چونکہ وہاں مخلوق نہیں تو مخلوق کا حساب نہیں، تو قیامت کی اور جزا اور سزا کی بات نہیں. زمین ایک واحد ایسا پلینٹ ہے کہ جس پہ انسان بھی ہیں اور جنات بھی ہیں، دوسری مخلوقات ہیں. تو چونکہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے کہ اپنے لیے کون سا لائف سٹائل چوز کریں، تو اس لیے جب اس زمین کو توڑا جائے گا تو اس وقت پھر یہاں بسنے والی مخلوق کا حساب کتاب ہوگا، اور اسی کو پھر ہم قیامت کے نام سے لیتے ہیں. اور یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دابتن کا لفظ کہا. دابہ کا لفظ دبیب سے ہے، اور دبیب جیسے کہ اپنے لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے، سافٹ، دبیب چال والے، نرم چال والے جانوروں کو کہتے ہیں. بس اگر آپ دیکھیے کہ جیسے ریپٹائلز ہوتے ہیں، سانپ ہے اور سنڈیاں ہیں، ارتھ وارمز ہیں، یا جیسے وہ جانور جن کے پاؤں کے نیچے بڑا سافٹ سا فارمنگ سا ہوتا ہے، بلی کہہ لیجئے، جن کے چلنے کی آواز نہیں آتی، اس کو دبیب کہتے ہیں. یہاں مراد لیونگ کریچر ہے، کوئی امیبا ہو یا بڑے سے بڑی چیز ہو. الا علی اللہ رزقها، ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے سارے غموں سے آزاد کر دیا. انسانوں نے اپنی زندگی میں جو غم پالے ہوتے ہیں نا، اس میں بہت بڑا غم رزق کا ہے. مان کے دیکھ لیجئے، لکھ کے دیکھ لیں، آپ جس طرح سے بھی اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھیں، اپنے غموں کی لسٹوں کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے دیکھیں، یا اپنے کھانے کی فکر، شوہر کی جاب کی فکر، بچوں کے کیریئر کی فکر، یہ کیا ہے؟ پڑھیں گے نہیں تو کمائیں گے کیا؟ جاب نہیں ملے گی، بیٹیاں پڑھیں گی نہیں، اچھے گھروں سے رشتے نہیں آئیں گے تو غریب غربا کو دینے پڑیں گے. یعنی رزق کا غم اتنا بڑا غم ہے لوگوں کی نظر میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ تم کیوں فکر کرتے ہو، میں نے ذمہ لیا ہے. اور یہ ذمہ اللہ نے کب لیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، تقریباً 120 دن بنتے ہیں، تو فرشتہ آتا ہے، 4 باتیں لکھ کے جاتا ہے، جس میں ایک بات کیا ہے کہ یہ بچہ کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا. بلکہ بعض روایت میں یہاں تک اشارے ملتے ہیں کہ جب ایک شخص بستر مرگ پہ ہوتا ہے، اپنی ڈیتھ بیڈ پہ ہوتا ہے، فرشتوں کو خبر نہیں ہے کہ اب بالکل اس کے جانے کا وقت قریب ہے، تو 4 فرشتے آتے ہیں جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق لکھنے پہ لگایا تھا، جو اس کے نصیب کا تھا، میرے ریکارڈ کے مطابق یہ سب کھا چکا ہے. اب میں پریشان یہ ہوں یا میں حیران ہوں، اپنی زبان، ظاہر ہم انسانی زبان میں بات کرتے ہیں، فرشتوں کی بات کیسی اس کو تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن خلاصہ اس کا کیا ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ کیا کھائے گا. اتنے میں ملک الموت اس روح کے پاس آ جاتے ہیں. تو کوئی مر نہیں سکتا جب تک اپنے نصیب کا رزق نہیں کھا لیتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فکر تم نے کیوں لگایا ہے؟ یہ میرا فکر ہے کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیسے کھانا ہے. और आप देखिए कि अल्लाह ने इस वादे को, इस दावे को झूठा नहीं करार किया। माँ के पेट से अल्लाह बच्चे को रिस्क देना शुरू करता है। आज एम्ब्रियोलॉजी थोड़ी सी भी अगर आपने पढ़ी हो तो आप देख सकते हैं कि जिस दिन औरत कंसीव करती है उस दिन से वो छोटा सा एक जाइगोट माँ के खून से खुराक लेना शुरू कर देता है। बच्चा बढ़ता जाता है, माँ घटती जाती है। ये जो शुरू में औरत पेल हो जाती है, एनेमिक हो जाती है, उसको नौजिया होता है, असल में आपको पता है क्या है? अंदर एक और पेट लग गया, वो उसको चूस रहा है, वो उसका खून ले रहा है। फिर औरत बाज़ दफ़ा सर्वाइव नहीं कर पाती और फिर वो एक बिग चेंज की वजह से आखिर क्या होता है कि जब बच्चा भी थोड़ा सा ग्रो अप हो गया तो फिर औरत का वज़न बढ़ने लगता है। लेकिन ये जब औरत का वज़न बढ़ता है ना, ये माँ का वज़न नहीं होता, ये बच्चे का वज़न होता है। औरत अमूमी तौर पर पेल ही दिखती है इन दिनों में, तो अल्लाह ने माँ के पेट से खून से रिस्क दिया। फिर इसके बाद बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है माँ के पेट में फ्यू मोर मंथ्स का, इवन खाने के साथ खाना खाता है। कैन यू बिलीव, बच्चे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम माँ के पेट में बन चुका होता है। माँ के पेट में जो खाना जाता है वो डिजॉल्व होता है, फिर उसके अंदर से जो असल चीज़ें हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती हैं वो बच्चे को ब्लड के जरिए से जाती हैं। यहाँ तक अब डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे माँ के पेट में पेशाब और पखाना भी करते हैं जो माँ के एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ जाता है। क्या फिक्र करते हो तुम अपनी, तुम क्या करोगे? इल्ला अल्लाह ही रिज़्क़ुहा, तुम अल्लाह पे डाल के तो देखो, तुम्हें माल का रिज़्क़ कहाँ से मिलता है, तुम्हें रोटियों का रिज़्क़ कहाँ से मिलता है, और तुम्हें मोहब्बतों का रिज़्क़ कहाँ से मिलता है, और तुम्हें दुआओं का रिज़्क़ कहाँ से मिलता है, और तुम्हें इस छत का रिज़्क़ कहाँ से मिलता है। ये इतना सूदिंग इफ़ेक्ट है कि यकीन करें कि इंसान इस इफ़ेक्ट में आकर इतना रिलैक्स फील करता है। मैं इस बात को सोच रही हूँ तो मेरे जहन में एक माँ आ रही है। माँ बच्चे के, बच्चियों के ख़ास तौर पे पीछे ही रहती हैं, काम किया करो, आगे जाना है, ये सुनते रहते थे हम भी अपनी माँ से। अब भी कुछ ना कुछ तो माएँ कहती होंगी, लेकिन आप सोचिए जब आपकी बच्ची के इम्तिहान करीब हों, आप उन दिनों क्या कहती हैं? बेटा तुम पढ़ो, मैं कपड़े भी तुम्हें इसरी करके देती हूँ। और ज़रा उस दिन तो बेटियों के लाड तो देखा करें जिस दिन खैर से सुबह उन्होंने पेपर देने जाना होता है। कमरे में माएँ ट्रे लगा के भेजती हैं, नहीं अंडा खा के जाओ, चाय पी के जाओ, वहाँ भूख लगेगी। बस अब इसको समझ लें, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, अल्लाह की नज़र में हम सब कमरे इम्तिहान में बैठे हैं। यू आर गोइंग टू योर एग्जामिनेशन हॉल, तो तुम क्यों खाने की फिक्र करते हो? मैं तुम्हारा खाना तुम्हें भेजता हूँ। बात समझ लें, अल्लाह कहते तुम इम्तिहान दो, बस तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे काम करूँगा। लेकिन क्या कहे इंसान अपने आप को, जो काम अल्लाह ने बंदे के ज़िम्मे लगाया वो कहता है कि मैं करूँगा, वो नहीं मैं करूँगा। क्या वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, अल्लाह कहता है तुम मेरे बंदे बनो, तुम मेरे हुक्म मानो, मेरी मर्ज़ी मानो, और मैं तुम्हारे काम करता हूँ। हम कहते नहीं, अल्लाह चूँकि कमाना है इसलिए नमाज नहीं पढ़ूँगी, चूँकि खाना पकाना है बच्चों के लिए इसलिए नमाजें लेट होंगी। आप नोट करके देखिए, अल्लाह ने कहा ये काम मैं करूँगा, तुम इबादत करो या तुम मेरे काम करो, तो हम अपने कामों की वजह से अल्लाह के काम छोड़ते हैं, इसीलिए ख्वार है। आज भी अगर आइमा कराम और मुहद्दिसीन और सहाबा की ज़िंदगी पढ़ के देखिए, वल्लाही उन्होंने इस आयत को बहुत अच्छी तरह समझा। इस दुनिया में अगर हम में से हर एक, चलिए सब की बात ना करें, जो मानते हैं इस अकीदे को, अगर आज हम अल्लाह के कामों में लग जाएं, अल्लाह ज़मीन से रिस्क उतारेगा और आसमान से भेजेगा। बिलीव मी, इस तरह के हालात हो जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते, ख्वाहिश करते हुए खौफ आएगा। विद इन फ्यू मिनट कह लें या वक्त की नौयत के अतबार से वो चीज़ आपके सामने आएगी, आप अपने आप को चुटकियाँ काटेंगे, आपकी चीख निकल जाएगी कि मैंने तो अभी किसी को कहा भी नहीं कि ये करो। यकीन कर सकते हैं आप लोग, ये एक अल्लाह ताला का वादा है, मैं नहीं मान सकती कि ये झूठा है। आप देखिए कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो मक्का मुकरमा में एक बहुत बड़े ताजिर थे, शायद आपको पता है कि नहीं पता, कपड़े का काम करते थे, बहुत कामयाब थे, तभी तो इतने गुलाम आज़ाद करते थे, लोगों को देते थे, वो मुसलमान और गैर मुस्लिम के फ़र्क के बगैर लोगों की मदद करते थे, कुएँ खोद रहे हैं, कहीं गरीबों को पानी दिला रहे हैं। इसीलिए मक्का वाले चाहे मुशरिक थे अबू बकर से प्यार करते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये शख्स बहुत जेनरस है। حضرت بلال کو انہوں نے خریدا، اسی طرح خریدتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام آیا دنیا میں، جب اسلام کا اتمام ہوا تو ابو بکر صدیق پہلے شخص تھے جو اسلام پہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈے ٹو ڈے ساتھی بنتے گئے، دن بدن دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داریاں بڑھتی گئیں تو کاروبار سے توجہ کم ہوتی گئی۔ لیکن تبوک کا سفر آپ پچھلے دو صورتوں میں پڑھ کے آئے نا، پہلے تبوک تک بھی ابو بکر نہ مفلس ہوئے نہ کلاش ہوئے، وقت ان کا اللہ کے رستوں میں لگ رہا ہے، مال اللہ خود بھیجے گا۔ دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات سمجھیے، اللہ نے تو بانٹا ہوا ہے، سورس آف انکم میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی آپ کو پیچھے غالباً سنایا کہ ایک جگہ کہیں جا رہے تھے تو ان کے پاس زرہ تھی، یعنی آئرن کا ڈریس ہوتا ہے جو پہن لیں تو دشمن سے انسان بچ جاتا ہے، تیر وغیرہ نہیں لگتے۔ قضاء حاجت کے لیے جانا تھا، یعنی ان کو واش روم یوز کرنا تھا۔ اب کہاں اتنی بھاری وہ زرہ اٹھا کے چلے، ایک شخص گزارا تھا، کہنے لگے بھائی تھوڑی دیر یہ میری زرہ ہولڈ کرتے ہو، میں بھی فارغ ہو کے آتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو دیا۔ اس دور میں کھلی جگہ ہوتی تھی، کسی کونے میں چلے گئے ہوں گے۔ اپنے دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج اس شخص نے میری مدد کی ہے، اس وقت میرے کام آیا، میں ابھی واپس جا کے نا تو اس کو 4 درہم انعام میں دے دوں گا، ایسی مدد کر دوں گا کہ دنیا میں ہوتی ہے ایسے، آپ میری مدد کرتے ہیں میں آپ کی کرتی ہوں، یہ چلتا رہتا ہے۔ جب واپس آئے نہ وہاں بندہ نہ زرہ، اب کیا ہوا، ڈھونڈے کدھر، قریب کوئی کہتے ہیں جو چھوٹی موٹی دکان تھی ادھر گئے، کہنے لگے تم نے یہاں بھی کسی آدمی کو دیکھا؟ کہا کیوں؟ کہا اس کے پاس ایک زرہ تھی۔ کہا ہاں ابھی ایک شخص آیا میرے پاس زرہ بیچ کے گیا۔ کہا کتنے کی بیچ گیا؟ کہنے لگا 4 درہم کی۔ حضرت علی نے کہا 4 درہم تو میں بھی اس کو دے دیتا، بٹ وہ اس کے لیے حلال تھے، یہ وہ حرام سے لے گیا، یہ ہے اللہ رزقہ۔ اینڈ آف دا ڈے رزلٹ ایک ہی ہے، بلکہ میں آپ کی زبان بولتی ہوں، اینڈ آف دا منتھ حساب ایک ہی ہوتا ہے۔ جب ہم حرام میں پڑ جاتے ہیں نا تو لیٹ سی 40,000 pounds ہمارے گھر میں آ جائیں گے، جس میں سے 10,000 تو ہمارے الحمدللہ حلال کے تھے، چلے آدھا کر لیتے ہیں، 20 کر لیتے ہیں، 20 پوری حلال کی کمائی کے تھے، 20 میں کوئی گڑبڑ تھی، کچھ اس میں کا بعض دفعہ کام سارا ٹھیک ہوتا ہے، اس میں ایک دو آئٹم ایسا بک رہا ہوتا ہے جو خراب ہے، اسی طرح ایک کام ٹھیک ہوتا ہے اس میں تھوڑا بہت خرابی ہوتی ہے۔ اب اگر اس کو نکال دو، مثال ہے جیسے، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، کوئی میرا اوپینین نہیں ہے، میرے ہسبینڈ ان کو سگریٹ سے بہت چڑھا ہے، ایک طبیعت نہیں بہت چڑھا ہے، تو کبھی بھی یہ اپنے پاکستانی گروسری اسٹور یا کہیں بھی جائیں تو پیچھے سگریٹ بکتے ہیں نا، تو یہ میرے سامنے بھی کھڑے ہونا کبھی، تو ان کو کہتے ہیں وائی یو آر سیلنگ دس، تو وہ بندہ پھر ایک دم، پہلے تو وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا نا، تو پھر تھوڑا سا وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے، تو یہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ ڈینجرس ہے، نہیں بیچنے چاہیے، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو لوگ اس کے بہانے آتے ہیں اور ہم سے اور بھی گروسری لے جاتے ہیں۔ اور یہاں تو الحمدللہ میں نے نہیں یہ مسئلہ دیکھا، لیکن امریکہ میں تو ہر دوسرے تیسرے مسلمان کا گیس اسٹیشن ہے، گیس اسٹیشن وہاں پیٹرول پمپ کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ کنوینئنٹ اسٹور، اور کنوینئنٹ اسٹور میں شرط ہے، قانون ہے کہ وہاں آپ کو شراب اور جوا رکھنا پڑتا ہے، لوٹو۔ ہر تیسرا چوتھا پاکستانی بھرائی بھسا ہوا ہے، اللہ کرے کہ اب نکل گئے ہوں اور بھی بہت سارے نہ پھنسے۔ جتنے لوٹے پوٹے پاکستان سے گھر اور بیویوں کے زیور بیچ کے گئے ہوتے ہیں نا، وہ وہاں جا کے سب سے پہلے ان کو جاب ملتی ایسے اسٹوروں پہ، $5-6 میں گھنٹے کے، پھر تھوڑے کچھ مہینے وہاں رہتے ہیں، وہ بےچارے پستے ہیں اس طرح، رات دن کام کرتے ہیں، اور اخیر پھر ان کو ہی کہا جاتا ہے کہ خریدنا یہ اسٹور، اب ان کی تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں اچھا کیسے؟ کہا بس اتنا مجھے جمع لے دو، باقی تمہارا، بینک سے لون لے دلا کے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو پھنستے ہیں اللہ کی پناہ۔ پورے شعور سے کہہ رہی ہوں، یہ میرے پچھلے 10-12 سال کی دیکھی ہوئی کہانی ہے جو میری زبان پہ رٹی ہوئی ہے۔ اس طرح ہمارے مسلمان بھائی بہن اس میں پھنستے ہیں۔ ہوا کیا، اینڈ آف دا منتھ آپ کے گھر 40,000 آ گیا، 40 میں سے مثال ہے 20 ٹھیک تھا، 20 خراب تھا۔ آپ کہتے ہیں میں کیسے چھوڑ دوں یہ چیز، شراب نکال دی تو چیزیں نہیں بکیں گی، سگریٹ نکال دی تو بکیں گی نہیں، اصل میں 20 کی تو گروسری تھی۔ اب ہوتا پتا کیا، اب اس سائیکل کو سمجھ لیں، گھر میں 40,000 آتا دکھا، اب آپ نے کہا کہ دیکھا 40,000 آئے، اب ہوا کیا کہ 40,000 کی گروسری تو کوئی گھر نہیں کھاتا، یہ تو ہم سب کو بھی پتا، ہم 4-4 ہاتھوں سے بھی اپنے بچوں کو کھلائیں تو اتنا نہیں کھلاتے۔ ہوتا کیا کہ اس میں جو ضروریات، جو کھانا پینا ہے وہ تو وہی ہے، پتہ کیا چلا، ایک دم گاڑی کی ٹکر ہوئی کہیں، پتہ چلا جی انشورنس کمپنیاں کرتے کراتے 10,000 کا بل آ گیا، वो जो 20 थे ना ऊपर के, उसमें से 10,000 गाड़ी की किसी टक्कर की नजर हो गए, 10 रह गए पीछे। वो पता चला एकदम घर में एक पाइप लीक हुआ, प्लम्बर को बुलाया, 10,000 का बिल आ गया, पीछे आपका फिर 20 ही रहता है। ममा साबकुम में मुसीबत निल्ला बीमा का सबत ईदी को। इसके बरक्स एक सीधा साधा मोमिन इंसान है, वो कहते हैं मेरा तो खर्चा ही $500 में पूरा हो जाना है, हलाल से मिल रहा है, कोशिश कर रहा हूँ, पूरा वक्त उधर लगाऊंगा, ये होगा, पार्ट टाइम कर लेता हूँ। वो जोड़ तोड़ करके बेचारा $1,000 भी कमा लेता है ना, तो उसको ये ऊपर की फटीकें पड़ती नहीं है। जितना ज्यादा आता है उतना ज्यादा जाता है, और इसकी गवाहियां वो लोग देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो फिर अल्लाह के डर से ये चीजें छोड़ते हैं। वक्ती तौर पे तो हाथ से दौलत जाती दिखती है कि हर महीने तिजोरियों में माल भरा आता था। यानी हमारी एक सिस्टर्स थी, कहती थी शाम को जब मेरे हस्बैंड घर आते थे तो वो बड़े बड़े बैग्स में नोट लेके आते थे, क्योंकि जो स्टेशन होते हैं ना तो वो अमूमन कैश पे सेल करते हैं, क्योंकि शराबी भंगी इस किस्म के लोग ज्यादा आते हैं, तो क्रेडिट कार्ड तो उनके वैसे रिलायबल नहीं होती। थैलों में भर भर के नोट लाते थे मियाँ, लेकिन पता नहीं चलता था जाते किधर है, बरकत नहीं होती। हलाल में बरकत है, हराम में कभी बरकत नहीं हो सकती। तो अल्लाह सुबहान तआला ने यहाँ ये बात करके कि देखो देता मैं हूँ और तुमने उसका रिसोर्स ढूंढना। अब एक सवाल है आपके जहन में इसके ऊपर कि अगर अल्लाह कहता है मैंने सबको रिस्क देना है तो फिर दुनिया में इतने लोग भूखे क्यों हैं? ये एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी लिखिए। फिर वहाँ नाइजीरिया में लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, और दनान जो अफ्रीका का गांव है उसके अंदर बच्चे ढांचे क्यों बन रहे हैं? उसकी वजह क्या है कि जिनको अल्लाह ने माल दिया होता है ना, वो अपने माल का कसीर हिस्सा ज़ाया भी कर देते हैं और उन तक पहुँचता नहीं। देखिए इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम समझ लीजिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि हमने नवा पारा फिर शुरू कर दिया, क्योंकि 9th पारे के शुरू में भी कौम शुएब के नाते से आपको मैंने ये कुछ बातें बताई थी इस किस्म की। लेकिन समझ लीजिए कि अल्लाह ने सबका रिस्क बांटा हुआ है। मिसाल है कि आप सब यहाँ अगर 100 लोग हैं, आप सबके हिस्से में एक एक शामी कबाब रखा हुआ है हमने ब्रेक में, मिसाल दे रही हूँ, उम्मीद ना लगाइएगा। अब आपके लिए हमने 100 शामी कबाब रखे हुए हैं, हमें पता है कि आज 100 लोग हैं, 100 के लिए 100 रख दिए। हुआ क्या कि जब लाइन लगी या लोग लेने आए तो कुछ ने एक की जगह 2 उठा लिए, तो जितनों ने 2 उठाए उतनों ने बाकी उन लोगों का हक मारा ना। अब क्या हुआ, कुछ लोगों की प्लेटों में 2-2 हैं, तो फिर उतने ही लोगों के पास नहीं होंगे, ऐसा है ना। तो अब होगा क्या, इस्लाम क्या कहता है कि जिसको अल्लाह ने दौलत ज्यादा दी है ना, अब अल्लाह ने खुद ही छांटा मारा, ऐसे जो कहते हैं ना छट्टा मारना, जब अल्लाह ने दौलत बांटी ना तो कुछ लोगों के घर में एक ही जगह 5 आ गई और कुछ के पास नहीं। अल्लाह ने क्या कह दिया, वातुज़्ज़कात, ज़कात दो, सदके दो, इन्नमा सदकातुल फुकरा, ताकि इस सारे जरिए से होगा क्या कि तुम इन सारी चीजों को दूसरों तक पहुंचाओ। एक तरफ हम इसराफ इतना करते हैं और दूसरी तरफ देखिए कि गरीब मरते हैं। तो अब होता क्या कि जिनके पास ज्यादा है अगर वो इस्लाम के कवानीन पे अमल करते हुए अपनी ज़कात और सदकात भी पूरी देते रहे तो दुनिया में कोई गरीब ना रहे। क्या इसकी कोई दलील मिलती है? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का दौर, ऐसा खूबसूरत इकोनॉमिक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया कि लोग ज़कात का माल लेके फिरते थे बाहर कि लोगों को ले लो, लेकिन कोई गरीब ही नहीं था। आज ये जो आपका हमारा ब्रिटिश, बरतानिया, इसमें वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, आपको कहते हैं ये कहाँ से आया हुआ है, खुद जाके इनकी किताब में पढ़ लें, ये उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की पॉलिसीज है। हम मुसलमानों ने छोड़ा हुआ, इसीलिए मर रहे हैं भूखे, गुरबत के मारे हुए हैं। अल्लाह ने वो दावा किया है कि मैं तुम्हारा राजिक हूँ, ये दावा तो कोई बादशाह नहीं कर सका आज तक, बड़े से बड़ा नहीं कर सका, छोटे कहाँ करें। ऐसी एक बात बचपन से सुनी हुई है नानियों दादियों के मुंह से कि एक बादशाह था, उसने कहा कि अल्लाह तू सबको रोज खिलाता है, एक दिन मैं खिलाऊंगा, मेरे पास भी बहुत है। कहा अच्छा जी, तो फिर क्या करूँ? कहा कि अल्लाह एक दिन तू ना खिलाना, मैं खिलाऊंगा, तो अपनी सारे लोगों को ले आना, बताना जिसको देना मैं दूंगा। कहा अच्छा ठीक है, कर ले। कई साल तक उसने अनाज जमा किया जितना वो कर सका होगा, क्या करना है किस तरह से, और उसके बाद कहा कि अल्लाह अब मैं तैयार हूँ, तू भेज अपने लोगों को। कहते हैं कि अल्लाह ने सिर्फ अपनी चींटियों की फौज अभी उसके पास भेजी और उसके वो सब खजाने ख़त्म हो गए और उसका माल ख़त्म, और पीछे सारी अभी कौम पड़ी है। फौरन जो गया, अल्लाह तो रज़ा के मैं नहीं हूँ। इस पर अगर आप सुन लेना तो इस्माल हुस्ना में से रज़ाक को सुनिएगा, अपने मर्दों को सुनाए, यकीन करें मैं आज भी सोच रही थी कि मैं आपको वही चलवा दूं। ये हमारा अकीदा है। आज हमारे मर्द क्यों परेशान है, आज हमारे घरों में क्यों बेचैनी है, क्यों नहीं वो दीन सीखने आते? लो हम कमाएं के दीन सीखें, कमा लो, चलो जाके कमाई करके देख लो, वो फिर भी नहीं मिलनी, तब मिलेगी जी, अल्लाह मिलेगी। जिसका दिल गनी नहीं है ना, उसके पास कुछ नहीं है। आपकी तिजोरी में हजारों हैं बैंक बैलेंस, आपकी लंबी लंबी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, और हवस नहीं खत्म, और हिरस नहीं खत्म, और गम नहीं खत्म। डॉलर थोड़ा नीचे जाता है, साथ ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। पाउंड नीचे जाता है, कहते हैं अल्लाह मर गए, क्या हो गया, सारे पाउंड रोक लो, ये पाउंड तो गिर गया, अभी नहीं देना, ये अब चढ़ रहा है, ये आ रहा है। लोग बिस्तर पे चले जाते हैं इन सिर्फ अपनी इन चीजों के रेट के इधर उधर से। दुनिया में देखिए प्रॉपर्टीज लोग लेते हैं, दुबई में क्या बता से 5 साल पहले, यूं से यूं नीचे गिरे थे लोग, अब फिर उभरे, फिर गिर रहे, उभर रहे। ये खेल है, ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल किस्म का लोगों को खिताया जाता है। करें क्या, अल्लाह के काम करें, अल्लाह की रजा के साथ कमाएं। क्या कमाएं ना, कमाएं। हदीस में आता है कि अत ताजिर सुदूक, सच्चा ताजिर क्यामत के दिन नबियों के साथ होगा। जिसने सच्ची कसम खाई, झूठ नहीं बोला, अल्लाह उसको खुशखबरियां देता है। तो रिस्क की बहुत ज्यादा डायमेंशन है। एक लेक्चर आपको मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, अगर आप खुद सुने या अपने घर में, बल्कि आप थोड़ा सा घर वालों को भी होमवर्क मिलना ही चाहिए, वैसे भी वो आपकी दराने की वजह से बहुत काम करते हैं घरों के पीछे से आपके, लेकिन आपने उनके साथ बैठकर क्या करना है, रिस्क की कुंजियाँ एक लेक्चर है वो सुने। USA के लेक्चर्स में अल्हम्दुलिल्लाह ये लेक्चर हमारा 2 दफ़ा हुआ था, एक दफ़ा अटलांटा में हुआ था या कहीं भी, आप इसको बैठ के सुने। 10 गालिबन कुंजियाँ यानी कीज ऑफ दी प्रोविजन के नाम पे ये लेक्चर, और मैंने दोनों जगह बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन ली थी, मुझे अभी भी याद आ रहा है जहाँ बैठे हुए थे। सुन के देखिए, बहुत कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि हम नाफरमानियों से, जालसाजियों से, हीले बहानों से, अल्लाह की नाराजगी के सामान जमा करने से अपना माल कम करते हैं। कभी आपने सोचा वो मुल्क जिधर लोग आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, वहाँ जॉब्स क्यों नहीं है, क्यों वहाँ जॉबलेस हैं लोग? ये पॉलिसीज, ये इकोनॉमिकली जो मुल्क पूरे का पूरा, कभी कहते हैं डॉलर डूब गया, कभी कुछ चला गया, ये क्यों होता है? ये इकोनॉमिकल टेररिज्म का शिकार है। आज भी अगर दौलत को वही गोल्ड कॉइन्स पे ले जाते हैं, सिल्वर कॉइन्स पे ले जाते हैं, तो चाइना से लेके अमेरिका की करेंसी एक ही होगी। पाकिस्तान में अगर एक बिल है तो वो भी अमेरिका में आके भी वो एक ही रहेगा। लेकिन ये चंद बड़ी ताकतों के हाथों में यरगमाल होके आज पूरी दुनिया को हमने डिसऑर्गेनाइज कर दिया। और मैं सोचती हूँ कि हम मुसलमान इकोनॉमिक्स ना पढ़ के और इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई ना करके दुनिया पे जुल्म कर रहे हैं। आज इन्होंने सूद का निज़ाम आम किया तो कोई खुश है? इंटरेस्ट को, इंश्योरेंसेस को आम करके क्या आपको लगता है ये वेस्टर्न कंट्रीज बहुत अमीर है? आपको पता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट इस वक्त मकरूज है कई बड़े बड़े लोगों की, नाम की बात है ना सिर्फ। तो असल बात फिर हम मुसलमान हैं। मैं तो कहती हूँ, अक्सर ही सोचती हूँ और दिन रात ही ये चीज़ें जहनों में आती हैं कि अगर हम मुसलमान इस इंसानियत पर रहम करने वाले होते तो इस खूबसूरत दीन को आम कर देते, जिसको हमने आज खुद भी नहीं समझा तो दूसरों को क्या समझाएंगे। अल्लाह अकबर। अब इससे ज़्यादा वक्त नहीं है कि हम इस पर बात करें, लेकिन इसके ऊपर गौर करते जाएंगे आपका दिल खुलता जाएगा, और दिल से आप हिरस निकाल दें। अब देखिए कि माँ के पेट में बच्चे को दूध मिला, बच्चा दुनिया में आया, दूध ही पी सकता था तो दांत नहीं मिले। आप जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, पैदा होते बच्चे के मुंह में दांत होते तो क्या हालात होते, फिर जू ही वो निकलने के कैफियत में पहला दांत निकलता तो माएँ कितनी खुश होती हैं, फिर जब वो हाथ को काटता है तो फिर होती हैं, हाय मुझे दंदी काट दी है जी।
कि आप जब अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करने, अल्लाह ताला रज़ाक है, क्योंकि पहले हम लोग भी बहुत डरते थे, जब से मैं दौरे कुरान के बाद से ये कहने के दिन में इतना सुकून और स्टेबिलिटी आई है कि पहले कुछ होता था तो मैं और मेरे हम गरीब हो जाते थे और हम अपने मीन्स और अपने सोर्सेज यूज करते थे, अभी हम लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया। और ये चीज़ मैं गवाही के तौर पर कहूँगी कि शायद किसी और के लिए भी एक मोटिवेशन का हो या स्टेबिलिटी के लिए सबक बने, ये यकीन कीजिए कि अब से नाउ आते हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला कहाँ से किस तरह से ऐसे सोर्सेज करते हैं कि वो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, पहले से बहुत बहुत बेहतर हो रही हैं। सबसे जो बड़ी चीज़ कवर हो रही है वो ये कि जो दिल का सुकून इत्मीनान है कि पहले हम लोग बहुत सारी बातें यहाँ पे रहते हैं, ज़ाहिर सब कुछ स्ट्रगल करते हैं, हम लोग यहाँ पे फैमिली का तो कुछ नहीं है, अपना खुद ही करते हैं अर्निंग सारी, तो यही होता था ऐसे कर ले, ये हो जाए, ऐसे कर ले। अब हमने जब से छोड़ा हुआ है हमें नहीं पता सब कुछ कैसे अपने आप एक स्मूथ
जी बिल्कुल यही बात होती है ना, असल में डिसऑर्डर का शिकार हम होते हैं, हमारे गुनाहों की वजह से रिस्क कम होता है। हदीस है कि करीब है कि इंसानों के गुनाहों की वजह से जानवर अपनी बिलों में मारे जाएं। क्यों? एक रिवायत में आता है कि अगर चींटियों और बिलों में मौजूद जानवरों की अल्लाह को परवाह ना होती तो बारिश रोक लेता लोगों के गुनाहों की वजह से। इसी तरह एक हदीस में आता है कि अगर तुम वो तवक्कुल करो जो परिंदों का है, जो सुबह को खाली पेट घर से निकलते हैं, जब वापस आते हैं अपना पेट भरा होता है और चोंच में बच्चों के लिए खाना होता है, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे रिस्क देगा। अल्लाह ने मोमिनों के दिलों की मिसाल परिंदों से दी है, बेगम बेखौफ, एक फूटी कौड़ी ना हो जेब में और बंदा खुश हो, कैन यू बिलीव, और कई सौ के नोट जेब में और धड़के लगे हुए हैं कि अब अल्लाह खैर करे आने वाली ज़रूरतें हमारी पूरी हो जाए, तो बादशाह कौन है? वो बादशाह जिसका दिल बादशाह है। असल दौलत जो थी वो गिना है, तमन्नाएं कम, आरज़ुएं कम। अल्लामा इकबाल ने एक मोमिन के लिए बड़ा खूबसूरत शेर कहा है, मुझे इसको आता नहीं लेकिन वो कहते हैं कि आरज़ुएं जिसकी कलील, इरादे जिसके अजीम। मोमिन ऊपर दूर बड़े बड़े पैगाम है, वो हर वक्त रोज़ी रोटी कमाने के फिक्र में नहीं होता। देखिए कि मेरा अपना पूरा ख़ानदान कारोबारी है, हमारे पूरे ख़ानदान में शायद ही कोई एक आधा बंदा जॉब करता होगा, और वो भी आप जो यंग लड़के पढ़ लिखे हैं। मैंने सारी ज़िंदगी अपने घरों में अपने नाना को, दादा को, बाप को, भाइयों को भी कमाते हुए देखा है, यानी एक ये सृष्टि में। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो ईमान हमें कुरान पढ़ के मिलता है ना, वही बातें जब कभी बैठ के बातें अपने बड़ों से होती थी ना, तो मैं सोचती थी कि ये अबू कारोबार पे नहीं जाते, ये तो कुरान पढ़ने जाते हैं, जो उनका बिलीफ था। और वो कहते थे कि मुझे अल्लाह देता ही सिर्फ इसलिए कि मेरा ईमान है कि अल्लाह के सिवा मुझे कोई नहीं देने वाला। ये तो नहीं कि दौलत कमाने वाले गलत कर रहे हैं। रिस्क के हलाल, एक पैनी नहीं आपने अपने माल में लगानी, ऐसी हराम की चीज़। और ये सब आज से अगर आप 20-25 साल पीछे जाएं, सब के कारोबार बैंकों के साथ थे, हमारे अपने, लेकिन सब ख़त्म किया। हमारे नाना जिसको आप कहेंगे जद्दी पुश्ती, जो उनके अपने बाप से कारोबार चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो काम था, आज भी वो बेताज बादशाह क्यों है? कि उनको पता है कि लिमिट्स क्या हैं। बीच में बहुत बड़े बड़े स्लम्स भी आते हैं, या इधर होता है बंदा कारोबार में या नीचे गिर जाता है, बीच में नहीं रहता, जहाँ से जाता है वहीं से वापस भी आ जाता है माशाल्लाह। लेकिन आप देखिए कि आज के दौर में ये जो कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि सूद के बगैर काम नहीं है, आज के दौर में कहते हैं बैंकों से कर्जा लिए बगैर काम नहीं है, ये मुश्किलें जो आज हमारे घरों में पड़ी हुई हैं। आज भी अगर आप अल्लाह पर रहें, और हम सिस्टर्स इसमें बहुत तआवुन कर सकती हैं, अपने मुतालबे कम करें, आप उनके साथ कहें हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं, आप ये हराम चीज़ छोड़ें, हम मेहनत कर लेंगे। आपको तो अल्लामा इकबाल जैसा बच्चा जिसने कुरान की तफसीर शेरों में की है, उनकी माँ क्या करती थी? अल्लामा इकबाल के बाप जो थे वो अंग्रेज़ की जॉब करते थे, और उनकी माँ की नज़र में, मैं नहीं कह रही, उनकी माँ की नज़र में ये नाजायज़ कमाई थी कि वो अंग्रेज़ जो बरसगीर पाको हिंद में मुसलमानों और हिंदुओं को इतना ओप्रेस कर रहा है उसकी जॉब की जाए। एक बकरी उन्होंने पाली हुई थी, उस बकरी का दूध निकालती, उसको बेचती और उससे अल्लामा इकबाल की ज़रूरियात पूरी करती। कहती मैं अपने बच्चे के पेट में नहीं जाने दूंगी ये टुकड़े। ये नस्लों में जाता है। आज जैसे लगता है कि सोर्स ऑफ इनकम ही वो खराबी है जिसने आज हमें हर तरह की इखलाकी मुआशी मुआशरती मुश्किलात में डाला हुआ है। तो अल्लाह सुब्हानहु तआला कहता है कि तुम भूखे नहीं मरोगे, मुझे पता है कि तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें खाने की ज़रूरत है, ये तुम्हें मिलेगा। वह यालम मुस्तकर रहा, वो जानता है इसके मुस्तकिल ठिकाने को भी, वह मुस्तउदाहा, और इसके आर्जी तौर पर सौंपे जाने की जगह को भी। ये बड़े खूबसूरत लफ्ज़ है, ज़रा इसको देखिएगा। पहला लफ्ज़ है मुस्तकर, काफ रौ रौ से कर्रुन। कर्रुन किसको कहते हैं? ठंडा होने को। आप में से किसी को हो सकता है नाम भी हो कुर्रतुल ऐन, आंखों की ठंडक। सूरह सजदा में आता है रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रतु अयुन। तो ठंडी चीज़ और जमना कैसे है? आप इसको आजमा लें, पानी का एक सांचा लें, जब वो सांचा फ्रिज में रख रहे होते हैं, फ्रीज़र में तो हिल रहा होता है ना पानी, रखते हुए कई दफ़ा थोड़ा सा गिर भी जाता है, लेकिन जब चंद घंटे बाद निकालते हैं तो वो जमा होता है। तो यहाँ कुर्रा में सर्दी, ठंडक और जमने का मानी है। इसी से फिर लफ्ज़ करारगाह, जमने की जगह। तो मुस्तकर कौन सा है? मुस्तकिल ठिकाना, जहाँ बंदा जम जाए। तो मुस्तउदाहा का लफ्ज़ क्या है? विदा से, वाउदालईन। इसी से लफ्ज़ अलविदा भी है। अलविदा रुख्सत करना, विदाई जिसको आप कहते हैं। विद आ कहते हैं किसी के पास अमानत रखना, ये जो लड़की की भी हम कहते हैं ना जल विदाई है, वो भी यही है कि लड़की माँ बाप के घर में एक अमानत थी, अब अपने असली घर जा रही है, तो विदा का लफ्ज है। तो फिर मुस्तौदो कहते हैं उस जगह को, वो जगह जहाँ अमानतें रखी जाती हैं। अब इससे मुराद क्या है, इसको मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ एंगल्स में लिया, जिनका सबका खुलासा आपको लिखा देती हूँ कि मुस्तकर और मुस्तौदो को अगर दोनों के साथ लें तो बास कहते हैं कि मुस्तकर क्या है, इंसान की आखरत, जहाँ हम अब्दी आबाद रहेंगे, अब्दुल आबाद रहेंगे, हम फीहा खालिदून, खुलूद है, जबकि उसके ऑपोजिट अलविदा या मुस्तौदा ये दुनिया, हम यहाँ 40 50 60 साल के लिए है ना, फिर ख़त्म, ठीक है, ये एक पहला मानी है। बस कहते हैं कि नहीं, मुस्तौदा से मुराद कब्र है, क्योंकि वहां बंदा टेम्परेरी बेस्ड होता है और मुस्तकर उसके मुकाबले में आखरत है। बस कहते हैं नहीं, मुस्तौदा से मुराद जो है वो कब्र है और मुस्तकर दुनिया है, यानी मुख्तलिफ तफसीरें हैं जिसमें कोई भी तजाद नहीं है। बस कहते हैं कि मुस्तौदा से मुराद माँ का रहम है, मदर यूट्रस, जिसमें बच्चा 9 महीने रहता है और जहाँ मरने के बाद रहेगा वो उसका मुस्तौदा है, यानी इसकी जो भी डिफरेंट फॉर्म्स आप बना सकें बना लें, लेकिन सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं। बास कहते हैं कि दुनिया में आने से पहले बाप की पुश्त बच्चे का मुस्तकर था, क्योंकि वहाँ वो पानी होता है जिससे बच्चे का वजूद होता है, और माँ का रहम फिर मुस्तौदा बन जाता है जिसमें बच्चा फिर 9 महीने गुजारता है। तो बहरहाल आप ये सब देख लीजिए कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हें हर जगह रिस्क मैं दूंगा, तुम किसी गार में भी छुप जाओगे तो वहां भी रिस्क मैं तुम्हें दूंगा। उसमें मैंने एक वाक्य सुनाया था रज़ाक में, आप भी सुनिएगा, कि कैसे एक शख्स था किसी जगह परेशान बैठा था कि रिस्क अल्लाह कैसे देगा मुझे, तो इतने में उसकी नज़र पड़ी तो एक दीवार थी और दीवार के बीच में ऐसे एक होल सा था, तो जब उसने उसके अंदर देखा तो नीचे देखा कि बिल्कुल गहराई में एक जानवर है, कीड़ा, और उसके मुंह में हरा पत्ता है। तो कहने लगा, अल्लाह तू इस अंधेरे में इस कीड़े को ये सब्ज पत्ता खिला सकता है, तो तू मुझे भी रिस्क दे सकता है। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारे ये गम और फिक्र ख़त्म हो जाए। ये जो अभी हमने देखा कॉन्सेप्ट था ना कि क्यों कुछ लोगों के पास बहुत है तो कुछ के पास क्यों नहीं, एक हल्का सा क्लिप देख लें। आप देखिए कि एक तरफ तो पौष दावते हैं ना कि वी अटेंड एंड वी वेस्ट, हम दावते अटेंड करते हैं, वी इंजॉय फिर इंजॉय करते हैं, सबको दिख रहा है, ओके अलहमदिल्ला, वी ईट एंड वी वेस्ट, ये वेस्ट है। इसके बरक्स दुनिया में दूसरी दफा दे सफर वो बर्दाश्त कर रहे हैं, दे बैग वो मांग रहे हैं, दे नीड इनको जरूरत है। अ थर्ड ऑफ अफगान एन एस्टिमेशन 8.5 मिलियन पीपल, आगे क्या था मुझे बोले। ये देखिए कि एक गिद्ध है वो बच्चे की इस लाश को खाने के लिए उसके पास मौजूद है, ये दनान की तस्वीर है, कभी आपको वो वीडियो दिखाऊं तो यकीन करें कई दिन तक खाना खाने को दिल नहीं करता। इस तरह जगह जगह लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जैसे ऐसे लगता है कि जानवरों के स्केल्टन है, भूख की वजह से माँ ने बच्चे को उठाया, पर ऐसे लग रहा है कि किसी ढांचे के ऊपर सिर्फ आपने कोई रबड़ की चमड़ी डाल दी है। चल चल के सुबह कहती हम चलना शुरू होते हैं सारा दिन खाने की तलाश में, तो जब दावतों में हम ज़ाया करते हैं उसका क्या बनता है। मुझे खुद एक दावत रिसेंटली खाने का मौका मिला था, आज तक उसका दर्द और उसकी तकलीफ नहीं ख़त्म हुई, खाना बाद में इतना वेस्ट होता है। एक स्वीट निकाल के लेके आए मेरे हस्बैंड, मैं उनके लिए शायद लाई, तो इन्होंने नहीं खाई, तो मैंने सोचा कि यहाँ मेरे टेबल पे होगी, तो मैं देख रही थी कि जो वेटर्स हैं वो सब खाने ऐसे ही वो ट्रैश में फेंक रहे थे, तो मुझे दुख हुआ कि ये ज़ाया होगा। मैं वहाँ से उठ के पीछे गई जहाँ पे स्वीट डिशेस लगी हुई थी, तो वो लड़की मुझे आता देख के कहती कि, तो मैंने उसको बताया कि इट्स क्लीन, बिल्कुल अनटच्ड है, तो मैंने इसको इधर इसलिए रखा है कि मेरी टेबल पे होगा तो वो फेंक देंगे। कहती डोंट वरी दिस ऑल विल गोन अ वेस्ट, और 40 स्वीट डिशेस लोग बोल रहे थे कि इतनी पड़ी हुई है, पूरे पूरे बिग केक्स और छोटे बड़े। मैंने कहा ये सब फेंक जाएगा? कहती यस इट्स अ लॉट। वो ज़ाहिर गोरी थी तो मैं उससे बात करने लगी, मैंने कहा क्यों नहीं तुम किसी कंपनी से बात करो कि रात को इधर आ जाए। कहती लोग इस आधी रात का कताना ज्यादा कौन ये हिस्सा ले, कहती रोज़ यही होता है, और जो हमारे सामने गोल्ड राउंड टेबल्स पे खाने के डिशेस थे पहले एपेटाइजर से पेट भर जाता है, खाना तो शायद ही चखा होगा किसी ने हमारे सामने, और वो उन्होंने राउंड टेबल्स पे हर एक के सामने सर्विंग्स रखी हुई थी। बिलीव मी के वेटर्स एक डोंगे के ऊपर दूसरा डोंगा रख रख के उसको उठा के लेके जा रहे, जिसे साफ लग रहा था कि ये सब डोंगे अब इनमें जाएंगे। ये हमारा हाल है, इस पे सोचने की जरूरत है। यकीन करें कि जब तक हम ये बातें नहीं सोचेंगे, ये है जो आज दुनिया में गुर्बत बन के फैल रही है। माल है, पैसा, वो कहते हैं पैसा फेंक और तमाशा देख, तो इसका कुछ ना कुछ जरूर मामला इंसान को प्रैक्टिकली करना चाहिए। कहीं भी अगर आपको मौका मिले तो इस सिलसिले में कुछ भी करें। मैं कहती हूँ सिर्फ शहर के चंद लोगों को, चंद मस्जिदों को, चंद ऐसे लोग जो सोशल वेलफेयर का काम करते हैं उनको बंदा कह दे कि रात को इतने बजे आ जाइएगा, अपने दो चार दस बंदे ले आए, सारा खाना खाली करके लेके चले दें, किसी को दे दें, फ्रीज कर दें, कुछ भी करें, लेकिन एक छोटा सा कतरा भी जाया करते हुए इंसान ये सोचे कि ये मेरा नहीं जाया हुआ, ये किसी कहत ज्यादा लोगों में से किसी का हिस्सा जो अल्लाह ने मुझे दिया था और मैंने उसको विनिमय कर दिया। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। कुल्लुन फी किताब मुबीन, ये सब कुछ रोशन किताब में मौजूद है। ये कौन सी किताब यहाँ मुराद है? इससे लोहे महफूज है, यानी जो जिसका रिस्क है वो पहले से लिखा हुआ है। अल्लाह की किताब है जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि किसने कितना रिस्क खाना है, कितना नहीं खाना। और आप देखिए कि राजिक है ना, तो उसने सिर्फ रिस्क नहीं दिया, एक बड़ी दिलचस्प चीज नोट कीजिएगा, अल्लाह राजिक है ना, सिर्फ रिस्क नहीं दिया, उसने हमारे अंदर एक ऐसा निजाम भी लगा दिया कि कुछ घंटों के बाद अंदर से आवाज आती है कि अब कुछ खाना है। खाना मौजूद हो, भूख ना लगे तो खाएंगे, बच्चा भूख पर रोए ना तो माँ दूध पिलाएगी, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो ये भी अल्लाह के रज़ाक होने की अलामत है कि वो हमारे अंदर भूख के जज्बात रख देता है। फिर आप देखिए कि दुनिया में लोग जब हमसे नाराज होते हैं ना, कहते हैं चलो जाओ मैं नहीं तुम्हें बुलाऊंगी दावत में, हम तो उनको ही बुलाते हैं ना जिनसे हम खुश होते हैं। अल्लाह उनको भी खिलाता है जिनसे अल्लाह नाराज है, और अल्लाह उनको भी खिलाता है जिनसे अल्लाह खुश है, सारी कायनात को देता है। अगर आप देखिए कि दुनिया में कोई एक हमें ना दे तो दूसरा देने को तैयार है, लेकिन अगर अल्लाह हमें ना दे तो कौन देगा? अल्लाह ने इंसानों को दोस्तियां दी हैं, ये भी रिस्क होता है। एक दोस्त जुदा होता है तो एक नया बन जाता है, एक रिश्ता छूटता है, माँ बाप जाते हैं तो एक नया बच्चा पोता नवासा घर में आता है, ये सब रिस्क के मुख्तलिफ अंदाज हैं। तो सारी बात का आखिरी जुमला क्या है कि बंदे तो दुनिया में हमें वक्ती तौर पर चार दिन कुछ खिला दे, चार दिन वो हमारे किसी मौके पे कफील बन जाएं, तो हम सारी जिंदगी उनके एहसान नहीं भूलते। अगर हमारे अंदर कोई इंसानियत है, एहसास मौजूद रहता है, किसी के घर से आप एक दिन खाना खा ले, अगले दिन तड़प लग जाती है पहले मैं खिलाऊं फिर खाएं, कोई नहीं कहता कि मुझे खिलाओ, लेकिन इंसान की अर्ज है। अल्लाह की जात के लिए कभी ये जज्बे आए, किस तरह से अल्लाह हमें खिलाता है और अल्लाह को क्या मिलता है जो हम अल्लाह के नाम पे देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनाई होगी आपको पहले भी, कि कहा कि अल्लाह तू खुद क्या खाता है, दूसरों को तो इतना